नसीब, बिल्कुल। और फिर बेअदब
बेनसीब,
इसका मतलब क्या हुआ?
जो कि जो
जी सर,
नसीब वाला जो बेअदब होगा वो
अदब वाला, अच्छे अखलाक वाला होगा, अच्छे अखलाक के साथ ऑटोमेटिकली उसको दुनिया और आखिरत की, बिल्कुल सही। और अच्छे अखलाक की कोई दुआ याद है? आईने में देखे हम अपने लिए क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा
اللهم كما حسنت خلقي خلقي
ٹھیک ہے ان شاء اللہ یاد کریں گے جیسا میرا چہرہ ویسے میرے ہو جاتے کہ واقعی میں ہم رحمت بنتے یا زحمت بنتے ہیں. اور ایز اے فرینڈز جی سے
گفٹ ایکسچینج کمپلیکیٹڈ کہ لائک اگر آپ سمپل کرنا چاہو اور آپ ریٹرن میں جیسے ایسے مشکل ہو, اور دوسرا یہ کہ اللہ نے آپ کو جانتا ہے تو اگر آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ نا
بس آپ ظاہر پہ قیاس کیجیے. جزاک اللہ بیٹے جی, آپ دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال کیا کہ گفٹس کی ایکسچینج کے معاملے میں یا نیت کیا ہے, اگلے کی نیت کچھ بھی ہے. آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں بڑی خوشی سے دیا ہے, آپ کہتے ہیں دل کھول کے دکھائیں خوش بھی ہیں کہ نہیں. آپ کہتے, وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دیا, آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیں دین کے لیے نہیں دیا. اللہ کے نبی کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو. کوئی کہتا ہے آپ کو آئی لو یو تو کہہ دیجیے ٹھیک ہے شکریہ. آپ کہتے ہیں کھول کے دکھاؤ, بائی پاس کراؤ, اندر سے دیکھو, نہیں ہے جی. ان کا سوال یہ کہ آپ سمپل رکھتے ہیں گفٹس کے سلسلے کو, آپ سمپل ہی رکھیے, آئندہ آہستہ آہستہ ان کا بھی سمپل ہو جائے گا. دیکھیے جب بھی کسی بھی رسم کو توڑنا ہوتا ہے یا بہت ہی فیمس چیز یا جو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ ول پاور چاہیے ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تحفہ قبول کر دیں کہ آداب, ریٹرن میں کیا کریں؟ جی یہی کریں, آپ وہی کیجئے جو کرنا ہے. یعنی مثال ہے کہ میں کسی کی شادی پہ جاؤں گی تو میں شادی کے دن یا شادی کے موقع پہ گفٹ نہیں دوں گی, ان کو مجھے بلانا ہے تو بلائیں گے, نیکسٹ ٹائم نہیں بلائیں گے. لیکن آپ کسی بھی طرح اچھے طریقے سے ویسے بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قیمت میں نہیں, قیمت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. پھر آپ میں سے کسی نے بریک میں آ کے کوئسچن کیا تھا تو کہ کسی کا آپ کو پتہ ہے کہ بزنس حرام کا ہے, اب ان کے ساتھ دوستی ملنا جلنا اس کے کیا آداب ہے؟ دیکھیے پہلی سے بات ہے کہ حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ان کے لیے وہ حرام ہے حلال ہے نہیں ہے, لیکن ان کی مجبوری ہے آپ کی مجبوری نہیں ہے. ہمارے پاس وہ وقت آنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے پیارے, ہمارے فیملیز کے یا رشتہ دار یا دوست حرام میں پھنسے رہیں اور ہم ان تک اپنی یا اللہ کی بات نہ پہنچائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ, مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسجد بننی ہے, اب مسجد میں لوگ آ کے ڈونیٹ کر جاتے ہیں, کہاں سے کیا, کس سے کیا, آپ کا میرا کام نہیں ہے, بات سمجھ گئے. تحفے کے معاملے میں بھی اس وقت کی زیادہ فکر نہ کریں کہ آپ کو آپ کی دوست نے جو گفٹ دیا وہ حلال کمائی کا تھا یا حرام کا تھا. ہاں تحفہ غلط ہے, حرام ہے. مثال ہے کہ جیسے کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے, پھر تو اپیرنٹلی آف کورس ریفیوژن ہے, اچھے طریقے سے اصلاح کی جا سکتی ہے. لیکن مثلا مجھے کوئی کپ دے اور اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں تو میں تو کہہ دوں گی کہ میں اس میں نہیں کھاؤں گی. سونے چاندی کے برتن کا کوئی گفٹ مجھے مل جائے تو میں تو اس کو یوز نہیں کروں گی نا. لیکن اصل یہ فکر کیجئے کہ وہ خود کیوں کر رہے ہیں یہ کچھ, حرام میں خود کیوں پھنسے ہوئے, اس سے دوسروں کو خود بھی بچانے کی کوشش کرے. پھر ایک اور بہت اچھا ان کا سوال ہے کہ جو لوگ دور ہوں ان کی عادت کے کیا آداب ہے. یہ تو سب سے آسان ہے, روز صبح اٹھیں, ایک دعا چھوٹی سی مریض کے پاس پڑھنے والی, اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک, 7 دفعہ یہ پڑھ دیجئے. اور مریض کی موت کا وقت اگر نہ آیا ہو تو اللہ کے حکم سے شفا ہوگی, اب آپ یہ پڑھ کے دے دیجئے. کل اگلے دن اٹھے, ایک دو دن بعد خیال آیا تو لا باس تو ہو رہے انشاءاللہ. آج کل تو وہ واٹس ایپ کی آڈیوز نے اتنا آسان کر دیے کہ آدھی ملاقات ہے, تو پھر تو بہت اچھا. ان کو دعائیاں کلمات دے دیں, دو لفظوں میں پوچھ لیں کیا حال ہیں, کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہوں گے, السلام علیکم. ایون اگر قریب بھی ہیں اور ایسے ہی لفظوں سے عادت کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. फिर एक इनका सवाल है कि खुदा हाफिज़ कहें या सलाम कहें। देखिए, जब एक अच्छा अल्टरनेट मौजूद है और लफ्ज़ अल्लाह में कितनी मोहब्बत है, तो खुदा का लफ्ज़ तो फ़ारसी का लफ्ज़ है, खुद बना हुआ, वो जायज़ है वो नाजायज़ है, इसको हम नहीं छेड़ते, लेकिन मैं तो अल्लाह ही कहूँगी। ठीक है, बस ये बात है। अब हम आपके मेरे फेवरेट मनपसंद काम पे बात करने लगे हैं, और वो क्या है, सब बोलिए, मोबाइल और टेलीफोन के आदाब क्या हैं, कैसे हैं। देखिए, ये भी वक्त आना था, और अगले 5-6 सालों में हम पढ़ें पढ़ाएंगे तो हम पता नहीं इसमें और क्या कुछ गैजेट्स यूज़ करेंगे। तो याद रखिए कि मोबाइल और फ़ोन अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इसके ज़रिए से आप बहुत सा वक्त और मेहनत, माल बचाकर, फासलों को कम करके दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात हमवार कर सकते हैं, और अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करना अल्लाह को अच्छा लगता है, फ़ायदा उठाएं, नहीं करेंगे तो कुफराने नेमत है। आज के दौर में अगर कोई ये सोच रखता है कि मैं अपने फ़ोन पे, फ़ोन नहीं, चलो फ़ोन तो है तो नेट नहीं, नेट है तो व्हाट्सएप नहीं, उनकी चॉइस है। इतना कच्चा ईमान नहीं होता आपका कि व्हाट्सएप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुआ और ईमान अन इंस्टॉल हो गया, और फेसबुक आपके लैपटॉप पे आ गई तो आपका अपना मामला बिगड़ गया। आप इन चीज़ों का अच्छे इस्तेमाल कीजिए, ना शुक्रिया से बचें। हाँ, कुछ कॉमन थिंग्स सेट कर ले, आज हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, और इस पर मैं आपको बताऊं कि एक पूरा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कराची ट्रिप था जो हमारा पिछले साल फरवरी का जो ट्रिप था 2017 फरवरी था आई थिंक सो या जो भी था, तो उसमें कराची में मैंने इस मौजू पे पूरी डिटेल से एक लेक्चर दिया था जिसमें ये ए टू जी था कि मोबाइल और सोशल मीडिया का क्या है। इंशाल्लाह आगे भी एक आने वाला है सोशल मीडिया के नाम पे, अभी नेक्स्ट ये वीक छुट्टियों में एक लेक्चर आएगा, उससे भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन यहाँ चंद सिर्फ पिन पॉइंट्स दे देती हूँ। करें क्या, नंबर एक, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुनासिब वक्त पे आराम और मसरूफियत का ख्याल रखिए। मुस्लिम 162, मोमिन कभी किसी की तकलीफ़ का ज़रिया नहीं बनता। 3 बेलों से ज़्यादा बेल्स ना दें, हो सकता है कोई बीमार हो या मसरूफ हो, हमारे तो वॉशरूम में बैठा बंदा परेशान हो जाता है, बाहर इतनी बेलें हैं। फिर बिला ज़रूरत तवील बात ना कीजिए। बनी इसराइल 26:27, हर लफ्ज़ का हिसाब होगा। फिर राबता करने वाले को मुकालमा ख़त्म करना चाहिए, यानी जो फ़ोन करे पहले उसको पूछिए कि क्यों किया था। हम पहले अपनी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, फिर एंड पे 10 मिनट बाद पूछते हैं, अच्छा आपने फ़ोन किया क्यों था, वो कहते हैं मुझे तो अब याद भी नहीं। फिर इसी तरह बात शुरू और आखिर सलाम पर कीजिए। अब आपके पास फ़ोन की बेल हुई, अब क्या आदाब है, नंबर एक कॉल को अटेंड कीजिए, बग़ैर जवाब दिए होल्ड नहीं करवाना चाहिए, और बिला वजह ये भी नहीं करना चाहिए कि हम कॉल अटेंड ही नहीं करते। अगर आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है तो बहुत मिठास और मोहब्बत वाले अंदाज से बात करने के बजाय बड़ी सिंपल तरीके से हेलो कहिए या बात कीजिए। सूरत अहज़ाब 32 में अल्लाह ने औरतों को बात करने के तरीके भी सिखाए। बच्चों को मोबाइल और फ़ोन अटेंड करने से रोकिए, और आज तो ये एक अलग इशू बन गया ना कि बच्चे ही फ़ोन पकड़ते हैं। माओ के बच्चे किस तरह पता चलता है किस औरत के बच्चे हैं या नहीं है, उसके फ़ोन को देखकर, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ये बच्चे यूज़ करते हैं, और जिसके घर फ़ोन करें और वो ना उठाएं, वो बच्चों ने बेल बंद कर दी थी और बच्चों ने देखा नहीं। यदि फ़ोन माओ का और अटेंड बच्चे करते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर इसी तरह पहले पूछिए कि फ़ोन करने वाला कौन है, फिर फ़ोन की बेल, कोशिश कीजिए म्यूज़िक और ऐसी बेकार आवाज़ों वाले बेल्स ना हों। अपने फ़ोन को अल्लाह की इताअत के कामों में इस्तेमाल कीजिए, नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल ना कीजिए। हमारी एक साथी हैं तो वो, उनका एक अंदेशा था कि मैं बहुत वक्त फ़ोन पे गुजारती हूँ, माशाल्लाह 200-300 ग्रुप्स को वो हैंडल करती हैं, मेरे गुमान के मुताबिक हज़ारों लोगों के साथ लेसन, और सारा दिन सबक सुनने लेने देने में वो रहती हैं। तो उन्होंने मेरे साथ एक शेयरिंग की थी अपनी, कि मैं अपने दिल पर ये बोझ महसूस करती थी कि सोने जागने तक फ़ोन ही मेरे हाथ में होता है, तो क्या मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर रही। तो ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनको इतना क्लियर ख्वाब दिखाया, जो मैं ज़हर आपसे तो नहीं शेयर करूँगी क्योंकि गलत भी हो सकता है बताने में, लेकिन वो उन्होंने जब सुना रही थी तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। बिल्कुल जो उसकी माइंड सेट था वो उन अल्लाह ने उनको मतलब अपने उनके ख्वाब से दिखाया कि उनका कोई फ़ोन है या कोई गैजेट है और उसमें फुदकते नाचते और इस तरह के आइकॉन है, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें से एक एक आइकॉन बदलता जा रहा है और वो सारे अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह की सिफात कुछ इस तरह के बन गए। इशारा क्या था कि पहले गलत इस्तेमाल था, तो अब तो ठीक है ना। तो अब आप देखिए अगर फ़ोन पे 24 घंटे आप पूरी दुनिया के साथ रابطे में और उधर के टाइम जोन के मुताबिक इंस्ट्रक्शन लेनी देनी, तो क्या ये इबादत नहीं है? तो लिहाजा इसको हमेशा अल्लाह की रज़ा में इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल कभी ना दें, किसी के मोबाइल या फ़ोन को उसकी अदम मौजूदगी में और उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं टच करना चाहिए। याद रखिए कि फ़ोन्स भी हमारे पर्सनल्स बन चुके हैं, बाज़ लोगों की पिक्चर्स होती हैं कुछ भी है, तो कोशिश करना चाहिए कि किसी दूसरे का फ़ोन ना अटेंड कीजिए। ख़ास बातों को फ़ोन पर नहीं करना चाहिए, फ़ोन पर वो बातें कीजिए जो डे टू डे फौरी है। ख़ास बातें लिखते रहिए और एक अच्छी सी मीटिंग करके उसमें वो सारी बातें दूर कर ले। आज ये जो इश्यू बन गया ना, हर चीज़ ही मोबाइल्स पे, इवन मीटिंग्स भी, आई डोंट लाइक इट। देखिए मोबाइल इज़ एमरजेंसी ज़रूरत, एमरजेंसी में कोई काम कर कर आ रहे हैं ना, तो फिर मोबाइल के ऊपर वो बात करें, हर बात मोबाइल पे नहीं। बास लोग तो एक घर में रहकर अपने एक दूसरों के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि बहुत ऊंची आवाज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ऊंची आवाज़ से फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। हमारी एक सिस्टर थी तो उनके हस्बैंड बहुत ऊंचा बोलते थे, तो वो फ़ोन मिला के जब पाकिस्तान बात करते तो वो कहते थे आपको कॉल मिलाने की भी नहीं ज़रूरत, आपकी बात वैसे ही पहुंच जाती। तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सूरह लुकमान 19 में आपने इस मैनर को पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह मस्जिद में और इल्म की महफिलों में दाखिल होते वक्त फ़ोन को बंद कर दीजिए। फ़ोन को फ़ख्र के लिए इस्तेमाल नहीं करना, लुकमान 18। अल्लाह को क्या बुरा लगता है फ़खूरा, फ़ख्र वाला बंदा नहीं। सच बताएं, मैं एक छोटी सी बात सोच के देने के लिए कर रही हूँ, ज़रूरत है अल्लाह ने दिया है वो और बात है, लेकिन क्या आज ये कल्चर नहीं बन गया? कौन सा है, किस ब्रांड का, कितने GB का, और फिर 7, 8, 9 और X, फिर एंड्रॉयड के आईफोन, स्टेटस कॉन्शियस नहीं बने। हाथ से टूटेगा और अभी गिर जाएगा और टूट जाएगा, तो आपका 1-1.5-2 लाख रुपए आपके हाथ में पड़ा रहेगा। फ़ोन तो इंतहाई ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसी तरह फ़ोन के इस्तेमाल के दौरान भी कोशिश करें हेलो से बचिए, ये भी नॉन मुस्लिम मुशाबहत है। कॉल अटेंड ना कर सकें, कोई पैसेज रिकॉर्ड करें तो उसके अंदर भी इस्लामी असूलों को रखिए। फिर इसी तरह से बच्चों को सिखाइए कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तालीम देनी चाहिए। फिर इसी तरह से किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ने चाहिए। बुखारी में रिवायत है 7042 कि गैर मौजूदगी में भी किसी की चीज़ को टच ना करें। फिर इसी तरह उसका डाटा उसमें से लेके उसकी चीज़ें खुद ही उसके पिक्चर्स इधर उधर डालना, ये सभी को पता है कि आज के दौर के क्या इश्यूज़ हैं, इनसे बचिए। देखिए मैं तो इस पर एक बात कह के आगे चली जाऊँगी कि ला दरर वला दरार, ना तकलीफ़ दीजिए और ना तकलीफ़ लीजिए। और मोमिन दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो कि अपने लिए पसंद करता है। आप में से कोई भी नहीं अपने लिए पसंद करेगा कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपकी किसी चीज़ को टच करे, आपके बैग को टच करे, कोई सोच भी सकता? किसी के घर एक साल रह जाएं, उसकी अलमारी ना खोलें अगर उसके सामने नहीं खोलते, और दूसरी बात है कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तजस्सुस और इस तरह की चीज़ें जो वो दुरुस्त नहीं होती। फिर इसी तरह से इसके बहुत सारे शर और नुकसान भी हैं आज के दौर में, जो इंशाल्लाह आप छुट्टियों में लेक्चर सुनिएगा तो वो एक चूँकि पूरा घंटा इसी पर बात होगी आलमोस्ट, तो उसमें आपको इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। फिर आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको बंदा अपनी अकल से भी सोच लेता है, समझ लेता है, कुछ भी कीजिए। खुलासा ये है, तकलीफ़ ना दें दूसरों को। और अफसोस के बात है कि इस वक्त हमारे मुल्कों का सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त मोबाइल्स, सिम्स, पैकेजेस, अब तो सारी रात ही बात करते जाएं, और जितने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे हैं उसमें लड़के लड़कियों से और लड़कियाँ लड़कों से, ये इस्लामी कवानीन को तोड़ने वाली बातें हैं। हया ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों से, अल्लाह ताला बचाए। और अनलिमिटेड कॉल्स क्या मतलब, आपके लफ्ज़ भी अनलिमिटेड है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीत, आपकी तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा तो लिखने वाला उसको लिख लेगा। तो लिहाजा बेतुकी लंबी कॉल्स नहीं करनी चाहिए। 1.5 मिनट मेरी नज़र में, 1.5 मिनट से नीचे मैसेज छोटा है और ज़रूरी है, और 1.5 मिनट से ऊपर बेकार मैसेज है। पूरी मैं पूरी शोर से बोल रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, विदाउट एनी एग्जेजुरेशन 15 मिनट फ़ोन कॉल पे लगे और वही बात जो उसके एंड पे निकले, मैं आपको 1.30 सेकंड में पूरी की पूरी रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ। अक्सर लोग, यानी मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मैं किसी को मना नहीं करती, सबको नंबर दूंगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि आप अपना ऑडियो मैसेज छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट आपसे बात करनी है, यकीन करें घड़ी देखें वो 15 मिनट से 2 बात नहीं होती। और वो करेंगे कब? आज भी मैं आपको अपने दिखा सकती हूँ, मिड नाइट के बीच में 6-7 मिस कॉल्ड, कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है गलती से करे या नहीं भी, और आप ऑडियो मैसेज छोड़ दें। पूरी कोशिश, मैंने अपने लिए टाइम रखा होता है किस वक्त मैंने बाहर वालों के नंबर चेक करने हैं, एडमिन्स के, तो जब भी मेरी नज़र पड़े मैं कोशिश करती हूँ, चाहे मैं रात में 10 मिनट के लिए भी उठूँ मैं फिर भी उसको देखना पसंद करती हूँ कि उनके सुबह मेरी सुबह तो नहीं है ना। लेकिन यह है कि आम लोगों को जब एक सहूलत मिल चुकी, आप वही बात 10 दफ़ा कहेंगे, फिर रिश्ते की बात होगी, फिर तलाक की बात होगी, फिर उसने ये कहा, हो गई बात, नहीं 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 मैं आपको फिर ज़रा और डिटेल से बताती हूँ। और जब किसी से मेरे को मैसेज छोड़ना, वो कहते नहीं बात ज़रा लंबी है, तो मैं डर जाती हूँ, मैं कहती फिर तो आप मैसेज ही छोड़ें, जिसको आप लंबी कह रहे हैं वो कम अज़ कम फिर आधा पौना घंटा होगी। टाइम सेव कीजिए, आपकी क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो कोई सवाल है आपका, कोई मसला फ़ोन से मुतल्लिक? चलिए इस पर इंशाल्लाह फिर बातें होती रहेंगी। जी हाँ हाँ, तो उसको हेलो कह दें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। देखिए बोलिए पूरा, लिखने में अगर एब्रीवेशन है, इनका सवाल है कि टेक्स्टिंग में और मैसेजेस में, कि आपको कहते हैं कि मेरे फोन्स में एक ऑप्शन होती है प्री लोडेड, आप पूरा अस्सलाम वालेकुम लिख के डाल दें, लेकिन आप वेब अपने आइकॉन पे या सॉरी कीबोर्ड पे सिर्फ SLM लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। मुंह से पूरा बोलिए, ये बात नोट कीजिए। क्या लोग लिखते हैं AOA, मुझे समझ ही नहीं आती थी ये क्या बला है। जी आप बोलिए पूरा। इसी तरह एक मैसेज आगे किया माशाल्लाह, फिर उस पर अगले से अगला मैसेज, कोई मर गया तो उस बेचारे को एक ही दुआ दे दे के, और मुंह से एक बार भी नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़िए फिर फॉरवर्ड करें, करें ना करें, पढ़ ली तो ख़त्म हो गई, क्या अगले को बताना ज़रूरी है कि आपके ससुर के लिए हमने ये पढ़ा। तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह उस लेक्चर में मैं थोड़ी सी रिकॉल करवाऊँगी, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे हम इसको इफ़ेक्टिव बनाएं, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। जी मैंने ये कहा कि लफ्ज़ खुदा की जगह अल्लाह बोले, जहाँ भी बोले कह दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई हरज नहीं, वैसे तो सलाम ही है, आते में भी सलाम है, जाते में भी सलाम है, ठीक है। देखिए मियाँ का क्या मतलब है जी, मियाँ का लफ्ज एक अल्लाह को सजता नहीं है ना, अल्लाह ताला कहिए, अल्लाह सुबहानहू ताला कुछ भी कहिए जी, ठीक है। तो आगे है रास्ते के आदाब, ये भी इस्लाम की खूबसूरती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गाइड करता है। आप देखिए कि रास्ते क्यों बनते हैं, सहूलत के लिए, अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारियां कबूल ना करें तो ये सहूलत ख़त्म हो जाएगी। आप रस्तों में खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, दूसरों को जैसे गुजरना था, तो करें क्या, नंबर एक तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दीजिए, ये ईमान की सबसे छोटी शाख है। सही मुस्लिम 153 और बुखारी 2989 के रास्ते से अगर किसी को आप तकलीफ़ दे चीज़ उठाकर देखेंगे वो फेंक रहा है, तो आप उसकी ईमान की गवाही दे दें, मसलन छिलका पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, तो जायज़ नहीं कैसी चीज़, और इल्ला ये कि आप वहाँ डालें टिश्यू पेपर्स, टूटे हुए शीशे, फलों के छिलके, कचरा, ट्रैश, और ख़ास तौर पे जब मजलिस में जाएं तो जूतों का ढेर बाहर लगाओ। कितने लोग आते गिरते हैं आपको पता, क्योंकि वो बेचारे अपने हिसाब से आ रहे होते हैं, अंदर अभी आगे जूतों का ढेर लगा है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी कोई चीज़ रास्ते में न रखें, गाड़ी पार करते हुए ज़रा इधर उधर देख लीजिए कि मैंने किसी का रास्ता तो नहीं रोका। फिर रास्तों के अदाब में क्या है कि हराम चीज़ों से नज़रें नीची कर लें। अल्लाह ताला ने सूरत नूर 30 में क्या कहा, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, نظروں کو جھکانا راستوں کا حق ہے. اسی طرح بخاری 2465 اور مسلم 5563 کہ گھر راستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر عورتوں پہ نظریں ڈالنی اور ایسی چیزیں یہ درست نہیں ہیں. پھر اسی طرح راستوں کے حقوق میں کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو جواب دیجئے, بخاری 2465. قضاء حاجت سے بچنا چاہیے. جنگلوں دیہاتوں گاؤں میں بعض دفعہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں باہر, تو رستوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ کام, ورنہ پھر جو پیدل چلیں گے لوگ ان کو تکلیف ہوگی. اور مسلم 618 کہ مسلم مسلم کو تکلیف نہیں دیتا. پھر اسی طرح سے راستوں میں لوگوں کو اپنی بات یا اپنے کسی فعل سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, چھیڑ خانی کرنا, نظروں سے پیچھے تک دیکھتے ہی جانا یہ غلط طریقے ہیں, مسلم 618. پھر اسی طرح اگر راستوں میں ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجئے تاکہ لوگ کچھ فائدہ اٹھائیں, کوئی بری چیز دیکھیں تو اس سے روکیں, سورۃ آل عمران 110. پھر آپ کھڑے تھے, کوئی راستہ پوچھنے آ گیا تو اس کی مدد کیجئے, یہ بھی ادب ہے. اور جس شخص کو اپنا مقصد بھولا ہوا اس کو مقصد دلا دیجئے یاد, ترمذی 2726. کوئی اندھا ہے راستہ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا دیجئے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح عورتوں کو راستوں کے بالکل درمیان چلنے سے رکنا چاہیے, اجتناب کریں, ابن حبان 5572. اور بہت ساری روایات بھی ہیں کہ عورتوں کو مردوں سے ہٹ کے چلنا چاہیے, کناروں پہ چلیں عورتیں, مرد بیچ میں چلیں گے, سلسلہ صحیح ہے 537 بھی یہ موجود ہے. پھر کوئی کام برا سمجھا جاتا ہے آپ کی سوسائٹی میں, بس آپ دیکھیں نائٹ ڈریسز میں پھر رہے ہیں یا جوتے ایسے ہیں یا ایسا لباس پہنا ہوا ہے یا کھاتے پیتے راستے میں ریپرز پھینک رہے ہیں, یہ ساری چیزوں سے رکنا چاہیے. پھر آپ راستے میں تھے, کسی کو مظلوم دیکھا, کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو مظلوم کی مدد کیجئے, اور کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکیے, ترمذی 2726. کوئی چوری کر رہا ہے آپ نے دیکھ لیا, فوراً پولیس کو کال کر دیجئے, آپ کی نظروں کے سامنے کوئی حادثہ ہو گیا آپ اس کے گواہ بن جائیے, یہ نہیں کہ اب ہمارا نام گواہی میں پڑا تو پھر ہمیں پولیس کے پاس جانا آنا پڑے گا. پھر اسی طرح سے ٹریفک قوانین ہیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ مسلمان کتنا مہذب شخص ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جب یہ کیا راستے کا کام تو اب ایک ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک سفر کے آداب. سفر زندگی کی ضرورت ہے, دین کا بھی ہو سکتا ہے, دنیا کا بھی ہو سکتا ہے, حج اور عمرے کا بھی ہو سکتا ہے, علم کی حصول کا بھی ہو سکتا ہے, جہاد اور تجارت کا سفر بھی ہے, دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کا سفر بھی ہو سکتا ہے. کریں کیا کچھ آداب بہت ضروری ہے. تین حصوں میں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں, آپ اپنے اس کالم کو 3 کالمز میں ڈال دیجئے, سفر شروع کرنے سے پہلے, اس کے دوران اور اس کے بعد. نمبر ایک, پہلے نیت درست کیجئے, سفر کی تھکن ہوگی, مال لگے گا, اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا, بخاری 1295, مسلم 1628. بعض عبادات اللہ نے سفر میں مختصر کیوں کی ہیں, تاکہ آپ کام جو کر رہے ہیں اس پہ فوکس کیجئے, بخاری 2996. پھر نافرمانی کے لیے سفر نہیں کرنا, ایسے علاقوں کی طرف سفر کرنا جہاں بے حیائی اور برائی کے کام ہوں اور انسان حرام کاموں میں ملوث ہو جائے. یہاں دیکھیں پھر ایک دل تو ٹوٹنے والی بات ہے, لیکن سچ ہے بعض دفعہ ہم اوور سیز سے ہزاروں ڈالر کا ٹکٹ خرید کر شادیاں اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر کیا خرافات کر کے آتے ہیں. اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, تو پھر شادی میں وہ چیزیں جس میں گناہ ہے اس میں شریک نہ ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئیں اور ابھی آپ نے واپس بھی جانا ہے, گناہ کا سفر ہو جائے گا. تو نیت رکھیں کہ ہم نے جائز کام کرنے ہیں اس سفر میں جانے اور آنے میں, ناجائز نہیں کرنے. استخارہ کیجئے سفر سے پہلے, کاموں میں ایک یہ کام ہے, سنت ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا اس میں. اور بخاری 7390 ہی لے لیجئے, استخارے کا طریقہ وغیرہ ہم سب پیچھے دیکھ چکے ہیں. پھر مشورہ کیجئے, بعض دفعہ لوگ ٹکٹ بک کرا کے بتاتے ہیں ہم جا رہے ہیں, اب کیا فائدہ, مشورہ کرتے تو آپ کو اس کا کوئی اچھا سا سلیوشن دیا جاتا. اور کن سے مشورہ کریں کہ جو مخلص ہوں, جن کے ساتھ آپ نے کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, आप कोई वॉलंटियर कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो फ़र्ज़ है कि वो पहले मशवरा करें। कई दफ़ा कई अच्छे हल भी निकल आते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आपका हक है, जिनको आपने कुछ कमिटमेंट्स दी ली हुई हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए। सही मुस्लिम 5651। फिर इसी तरह लोगों के हकूक अदा करके जाइए, अगर किसी से कर्ज लिया हुआ है कर्ज़ दे कर जाइए, और इसी तरह से कोई अमानत है उसको देर लेकर जाइए। नबी सल्लम हिजरत के सफ़र पे गए तो हज़रत अली को अपने पीछे अमीन बनाकर गए। सूरह निसा 58 में भी अमानतों का तذکرہ है। फिर वालदैन हयात हैं तो उनसे इजाज़त लीजिए, कोशिश कीजिए कि वो जिस सफ़र पे आप जा रहे हैं उसमें वो राज़ी हों। ठीक है, अगर वो खुश नहीं भी हैं, लेकिन कम अज़ कम उनसे खुशी से इजाज़त दे लीजिए और उनकी दुआएं मिल जाएंगी आपको, बरकत की दुआ। वो एक एक लम्हे आपकी दुआएं करेंगे, आप किधर हैं और आप किधर हैं। इसी तरह शौहर को से भी औरत इजाज़त लेगी अगर भाई या किसी के साथ भी जा रही है, और इसी तरह उस्ताद से भी इजाज़त लेनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये आगे अभी हकूक आएंगे, उसमें एक हक है जिसमें से मैं वहीं से आपको बता रही हूँ कि जो भी शख्स आप जिसके ऊपर मामूर है उससे कीजिए। फिर सफ़र से पहले वसीयत करनी चाहिए, सही बुखारी 2738 और मुस्लिम 4204। और हकदारों के हक दीजिए। फिर सफ़र पे जाने से पहले अपने कामों का कोई कायम मुकाम बना कर जाए, यानी आपको जो ड्यूटीज़ दी गई वो आपकी जगह कौन करेगा इसका एहतमाम कीजिए। आपके जाने से काम रुकेगा नहीं, लेकिन अगर आप पीछे किसी और को अपनी जगह छोड़ेंगे तो आपके दोबारा आकर उस काम पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अच्छा अदब भी होता है। फिर इसी तरह से अगर आप मर्द हैं और घर वालों के कफ़ील हैं तो पीछे वालों के लिए माल का इंतज़ाम करके जाइए, ऐसा ना हो कि घर वाले कर्ज लेने लग जाएं। फिर हलाल ज़रिए से सफ़र हासिल, सफ़र का ख़र्च लीजिए, हलाल में बरकत है, इसी में खैर है। फिर इसी तरह से दुआएं भी कबूल होंगी सफ़र के दौरान, लेकिन अगर माल रिस्क हलाल ना हुआ तो मुश्किल होगी, मुस्लिम 2346। फिर ज़रूरत के मुताबिक जो ख़र्च आपने करना है वहाँ वो भी साथ लेकर जाइए, ज़्यादा साथ होना चाहिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहरहाल इंसान को अपना इंतज़ाम करके जाना चाहिए। फिर इसी तरह से साथ कौन जाएगा, अगर एक से ज़ायद लोग हैं और आपने किसी एक को लेकर जाना है तो कुरा डाल लीजिए। नबी सल्लम अपनी बीवियों में कुरा डालते थे, बुखारी की रिवायत है 2879। अच्छे साथियों का इंतखाब कीजिए सफ़र में, अकेले सफ़र से आपने रोका है, बुखारी 2998। क्योंकि गाड़ी ख़राब हो सकती है, हादसा हो सकता है, और इसी तरह अकेला बंदा घबरा जाता है, इस तरह शयातीन और वसाविस आ जाते हैं, कई ख़राबियां आती हैं अकेले में, गुनाह हो जाते हैं, नफ्स का गलबा होता है, तो अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अबू बुखारी की रिवायत 2998। सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो किसी एक को अपना अमीर चूज़ कीजिए। अमीर का मतलब कि आप उसको टैग लेके देंगे, नहीं, हमारे बीच में कौन किसकी बात मानी जाएगी। देखिए सफ़र में बहुत क्रैंकीनेस होती है, कोई कहेगा रुकना है, कोई कहेगा नहीं रुकना, कोई कहेगा ये खाना है, कोई नहीं खाए, कोई कहता चलते जाओ, सबकी राय लेकर एक बंदे को बड़ा करे कि जो यस या नो कह दे वो काम होगा, मशवरे के साथ ये काम होंगे। अबू दाऊद 2608। और इख्तलाफात तो होते ही हैं, उनको हल करने वाला एक होना चाहिए। फिर अमीर की फिर इताअत भी लाजिम है, अब जिसको बड़ा बना दिया गया, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा है, तजुर्बे में छोटा है, आपको उसको मानना पड़ेगा। ये एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले वीक इसको भी साथ लें। उलुल अम्र की इताअत इज्तमाई ज़िंदगी का कितना बड़ा पिलर है, ये मैंने एक टॉपिक कुछ रखे हुए हैं जो इंशाल्लाह आखिरी दिन हम वाइंड अप करेंगे मिसलेनियस में से। फिर इसी तरह से ये जो भी इंसान सफ़र करता है, अमीर जो भी जिसको बड़ा बनाया जाए, फिर वो सबके मशवरे से फ़ैसला कर देगा तो उसको सब मानेंगे, सूरह आल इमरान 169। औरत सफ़र करे एक दिन रात का सफ़र तो महरम के बग़ैर नहीं करना चाहिए, बुखारी 1088 और मुस्लिम 3266। आप देखिए कि औरत मर्द से किस पर कमज़ोर होती है, सफ़र में हादसा भी हो सकता है, बीमारी मौत भी आ सकती है, तो महरम से मुराद फिर वही बाप भाई बेटा जो भी अल्लाह ने एक लिस्ट दे दी है तो उसको रखना चाहिए। پھر اسی طرح جمعرات کا دن نفس سلم کو پسند تھا سفر کے لیے، بخاری 2949، صبح صبح سفر شروع کرنا چاہیے، وائز غداؤ تھا میں نہلی کا، ارلی مارننگ نکلیں گے تو فائدہ ہوگا، یعنی فجر پڑھتے ہی نکل جائیں، یہ مراد ہے، ترمذی 1212. مناسب ذریعہ اختیار کریں، یعنی اگر آپ جہاز کا سفر ہے اور آپ گاڑی میں شروع کر دیں تو مناسب نہیں ہوگا، گاڑی میں جانا چاہیے، پیدل شروع کر دیں درست نہیں ہوگا. بعض وقت تقویٰ کے نام پہ بعض لوگ نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. پھر اسی طرح جانے سے پہلے گھر والوں اور دوستوں کو ایک اچھا سا پیغام ملاقات سے یعنی الوداعی ملاقات کرنی چاہیے، اور اس میں ایک دعا ہے، میرے ساتھ دہرا لیں، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کر کے چیزیں ضائع نہیں ہوتی، ابن ماجہ 2825. پھر جو یہ سی آف کرنے آئے ہیں وہ مسافر کو کیا کہیں گے؟ استود اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملی کا، ترمذی 3443 ہے. پھر اس طرح سے آپ دیکھیے سفر شروع ہوا، کیا کریں سفر کے آداب؟ نمبر ایک، بسم اللہ دعا پڑھیے گھر سے نکلتے ہوئے، ساتھ ہی دہرا لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ابو داؤد کی روایت ہے 5095. تو یہ دعا پڑھیے، اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدی تب کفی تب بقیتا، تو ہدایت دیا گیا، تو بچا لیا گیا اور تجھے کفایت کی گئی، تو پھر انشاءاللہ انسان خیر پہ ہوتا ہے. پھر دوسرا ادب کیا ہے کہ سواری چاہے جہاز کشتی ریل کچھ بھی ہو، دعا پڑھیں گے سب میرے ساتھ ہی شروع کریے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کس صورت میں ہے یہ قرآن میں؟ بولو، چلے آپ ڈھونڈ کے لائیے، میں نہیں بولتی. ابو داؤد کی روایت ہے 2602. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کیا اور ہم اس کو تابع کرنے والے نہ تھے، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. پھر سفر شروع ہوا، سواری پہ بیٹھے، کیا دعا پڑھیں گے؟ دیکھیں یہ تو تھی شروع کرنے کے وقت، سواری پہ بیٹھنے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ طویل والی، ہاتھ کھڑا کریں گے، اللہم انا نسلک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا وتوینا بودہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وثاء سفری وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. صحیح مسلم 3275. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کے بعد تو سفر آسان ہو جاتا ہے. ترجمہ سنیے گا، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقویٰ کا سوال اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے، اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے، یعنی فاصلہ کم ہو جائے. اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا نگران ہے، اے اللہ سفر کی سختی اور برے مناظر سے واپسی پر مال اور گھر میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا مانگ لینی چاہیے. پھر سفر میں اگلا ادب لکھیے، جب بلندی کی طرف گاڑی جا رہی ہے یا جہاز اوپر چڑھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب نیچے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے 2993. الحمدللہ اس پہ بھی پورے سیشنز موجود ہیں، ہم ہر سال ہی تقریباً ایک سے زائد دفعہ ناروے میں ٹرپس لے کر جاتے ہیں، تو جب ٹرپس جاتے ہیں تو اس وقت پھر ہم پورے ایک سیشن کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، اور اگر آپ نے بھی ڈیٹیل سے سیکھنا ہے تو ایک ٹرپ تیار کر لیں، تو پھر آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ صرف سفر پہ انشاءاللہ کئی چیزیں مل جائیں گی اللہ نے چاہا. بہرحال جنرل باتیں، آپس میں تعاون کرنا چاہیے مسافروں کو، سورت مائدہ 2 میں تعاون الالبر و تقوی سب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، امیر غریب، صحیح مسلم 4517. سفر میں کوئی اپنی چیز زیادہ دے دیجیے اگلے کو، कुशन भी दे दीजिए अपना, कोई बात नहीं। फिर आराम कर लेना चाहिए सफ़र में, तवील सफ़र में आपको भी फ़ायदा होगा और सवारी को कुछ देर रेस्ट मिल जाएगा। सही मुस्लिम 3840। फिर मुशक्क़त से बचना है, रात आए तो बीच में सोने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, मुस्लिम 1565। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सफ़र के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। मुसाफिर मुस्तजाबु दावात में से एक शख्स है, तो लिहाजा कसरत से दुआएं करें, दुनिया की, आखरत की, अपनों की, प्यारों की। तिर्मिज़ी की रिवायत है 1905। फिर नेक्स्ट है कि किसी जगह उतरे, स्टॉप ओवर लिया जिसको आप कहते हैं, ब्रेक ले लेना, तो वहाँ जब उतरे तो बहुत ख़तरा होता है सफ़र में, जंगल हैं, कोई मुसी जानवर, कोई और, कोई चोर डाकू छुपाओ, तो दुआ है काउज़ु बिकलिमात इल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक, ये मांग लेनी चाहिए दुआ। कुछ जिन्नात हो सकते हैं, उजाड़ जो उजाड़ जगह होती हैं वहाँ ऐसे ख़तरे होते हैं। फिर आप देखिए के लिए जब दौरान सफ़र आराम के लिए रुके तो सब इकट्ठे रहे, लोग इस इधर उधर फैल जाते थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा वादियों और घाटियों में बिखरना शैतान की तरफ से है। अबू दाऊद की रिवायत है 2628। और आप कहते हैं कि सहाबा कैसा गिरोह था, जब ये बात सुनी तो उसके बाद एक सफ़र में जब रुके तो सब इतना जुड़ के बैठे कि सिर्फ एक चादर उन पर डाल दो तो सारे उसके नीचे आ जाएं। सुभान अल्लाह, हम कहें लो जी आगे गाड़ी में फंसे हुए बैठे थे हम, फिर अब इनके ही साथ बैठे, लेकिन समय ना बताना है तो सफ़र में इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए, खैर है इसमें भी। फिर इसी तरह से सफ़र में अगर आप कहीं उतरे तो रास्तों में रुकना या आराम करना, जहाँ गाड़ियाँ हैं या लोग हैं वहाँ नहीं रुकना चाहिए, साइड्स पे रुकिए। आम सफ़र रात को करें क्योंकि रात को सफ़र आसान होता है, सफ़र करेंगे और इंतज़ाम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सफ़र जल्दी गुजरेगा। आपने आज भी साइंस में भी ये देख लिया कि रात को ज़मीन सिकुड़ती है, ठंडी होती है तो फासला जल्दी तय होता है, ट्रैफिक भी कम होता है, कह लीजिए अबू दाऊद 2571। हर एक की अपनी चॉइस है, किसी को रात की ड्राइव अच्छी लगती है, किसी को दिन की। बहरहाल दिन के रात के इब्तदाई हिस्से में सो जाएँ तो बाजुओं पर सर रख कर सोएँ, और अगर रात के आखिरी पहर में आराम करें तो बाजू खड़ा करके हथेली पर सर रख कर सोएं, वरना क्या होगा, गफलत की वजह से नमाज अदा नहीं होगी। सफ़र के दौरान नमाजों को बहुत केयरफुली रखना चाहिए। फिर जो वक्त होता है सफ़र का, उसको ज़िक्र और इताअत में गुजारना चाहिए, इस फुर्सत को गनीमत जानिए, कुरान पढ़िए, इर्द गिर्द जो माहौल उस पर गौर व फिक्र कीजिए, साथ जो साथी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत करीब होता है बंदा सफ़र में, क्लोज इंट्रैक्शन होता है, तो उसमें एक दूसरे के दिल की बात सुननी, दुख सुख करना और नसीहत करना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अबू दाऊद 2551। फिर इसी तरह अपने अच्छे असरात छोड़िए जब सफ़र करें, तो ये बहुत अहम नुक्ता है, माँ कद्दम व आसारहुम को सोचिए, जहाँ से गाड़ी के पहिए गुजर रहे हैं क़यामत के दिन ये गवाही देंगे आपके हक में या आपके खिलाफ। सूरह ज़िलज़ाल 4:5 और यासीन 12। और अच्छा सफ़र है तो फिर इंशाल्लाह हर जगह पे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप नाफरमानी की चीज़ें सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता, साथ बैठे को नहीं पता हेडफोन पे वॉकमैन में आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन ज़मीन के उन टुकड़ों पे और उन जहाज़ की कुर्सियों पे और गाड़ी में आपके असरात पूरी जगह पे छूटेंगे कि आप यहाँ से नाफरमानी को करते हुए गए, और ख़ुदा ना खासा हादसा हो तो क्या सुनते और देखते हुए गए। जितना खौफ मुझे जहाज़ में कभी वॉशरूम में ही जाते आते नज़र पड़ती है, जो स्क्रीन्स पे गंदी बेहुदा चीज़ें लोग देख रहे होते हैं, मैं तो कांप जाती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि रब्बन अला तुआखिज़ना इन नसीना, अल्लाह हम नहीं देख रहे लेकिन जो देख रहे हैं उनका क्या होगा। तो बस दफ़ा लोग सो भी जाते हैं तो ख़राब बेकार चीज़ें स्क्रीन्स पे चलती हैं। ख़ास तौर पे सफ़र के दौरान हराम और मकरूह चीज़ों से रुकिए, क्योंकि आपका तेज़ चल रहा है इस वक्त नामे अमाल, और उन उन जगहों पर स्टैम्प्स लगेंगे। फिर इसी तरह से सफ़र के दौरान क्रैंकीनेस आ सकती है तो सब्र कीजिए साथ रहने वाले सफ़र वालों के साथ। और आपको पीछे मैंने सुनाया था कि किसी के अखलाक की गवाही कब तब तक ना दो जब तक उसके साथ सफ़र ना किया हो, अगर वो सफ़र में कूल काम ठंडा है तो इंशाल्लाह वो वाकई अच्छा है। फिर इसी तरह से घर वालों से मोहब्बत के इजहार के लिए अगर आप वहाँ कहीं गए और कोई चीज़ तोहफे में ले जाएँ और फ़ौरन ना दें, कुछ दिन बाद दें ताकि अगली दफ़ा ना ले आने पर वो कहें आज क्यों नहीं ले, उम्मीद ना लग जाए, तो बहरहाल ये एक तोहफ़ा है, ये एक मोहब्बत है। अलदबुल मुफरत में 594 पे आप पढ़ लीजिए। अब आखिरी बात के सफ़र से वापस आ गए, नंबर एक जल्दी आइए, घर वापस जल्दी आना चाहिए, बुखारी 1804, जो ही ज़रूरत पूरी वापसी। دیٹس اٹ. یہی دنیا کا سفر بھی ہے. اللہ کے نبی کو کیا کہا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. پھر طویل عرصے کے بعد اگر شوہر گھر آئیں تو رات کو اچانک نہیں آنا چاہیے, اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. بخاری 1801 اور بخاری مسلم 4962. کیا کرتے تھے آپ؟ مسجد میں آتے, گھر والوں کو اطلاع دیتے اور پھر مسجد میں تھوڑی نماز پڑھ کر آتے. اب آج کل اس کی کمی کس نے پوری کر دی؟ اب کدھر ہیں وہ, کہتے ہیں لوکیشن چیک کر لو. دیکھیے میں کہتی ہوں اب تو بندہ قبر میں بھی جا کے چھپے گا نہیں, تو پہلے سے پتہ تھا اٹس اوکے, لیکن اچانک جس کو میں اپنی زبان میں کہتی ہوں سرپرائز نہیں دینا چاہیے. اب 2 سال سے شوہر باہر ہے اور وہ ملک ہے جہاں جس دور میں ایک فون کال بھی 2 منٹ کی کر لیں تو اتنی مہنگی, تو آپ سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے جی سرپرائز دیا ہے. گھر والے بے ہوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. ایسے سرپرائزز نہیں دینے چاہیے, بیکار باتیں ہیں. پھر اسی طرح سے اگلی چیز کیا ہے کہ جب واپس آئیں تو کیا پڑھنا چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ آ ایبونا تا ایبونا آبدونا لربنا حامدون. یہ بخاری کے الفاظ ہیں 6385. ہم واپس آنے والے ہیں, توبہ کرنے والے, اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے. کتنا اچھا لگتا ہے اس وقت, اور آپ دیکھیے کہ کیا پیارا دین ہے, آپ کو کیا کیا سکھا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر اب آپ آ گئے ہیں تو گھر والے کیا کریں؟ خوشی سے استقبال کریں. جب آپ بہت عرصے بعد آئیں پھر تو خوش ہوں گے, تحفے لائیں گے تو اور بھی خوش ہوں گے. وہ ہماری ایک ساتھی ہے, وہ کہتی ہے میں پاکستان جاتی ہوں جب تک سارے بیگ نہیں کھل جاتے میری بھانجیاں بھتیجیاں سوتی نہیں ہیں. پھپھو اس میں کیا ہے؟ بچوں کو بہت سسپینس ہوتا ہے تو عادت ڈال دی نا, تو میں تو نہیں جاتے دیتی, میں تو واپس آتے ہوئے دوں گی, کیونکہ اب میں آئی ہوں مجھے دیکھ کے خوش ہو, جب میں جاؤں گی تو پھر دکھ ہوگا تو پھر تحفے دے دوں گی. لیکن وہی جو بات آگے ہم کس میں کر چکے ہیں, ایک خاص وقت کے ساتھ باؤنڈیڈ نہ رہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں شرم آ رہی ہے دس اینڈ دیٹ, تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. امید نہ دلائیں لوگوں سے, تب لین دین کریں جب ان کو آپ سے امید نہ ہو. بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہے, یہ روایت 62-68 تھی. پھر وہی جیسے پیچھے بات کر چکے ہیں, مسافر دیر سے بعد کافی دیر بعد ملا تو پھر معانقہ کیا جا سکتا ہے, خوشی کا اظہار کیجئے. پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر سکیں تو سنت پوری ہوگی 4418. پھر اسی طرح سے اگر کوئی بہت عرصے بعد آ رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ویلکم کے لیے کھانے پہ بلایا جا سکتا ہے, یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور کھانا کھلانا تو سنت ہے. بخاری 3089 ہے. تو آپ دیکھیے کہ سفر بھی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر دل ایمان والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں اور اچھے طریقے سے ہم یہ سارے کام کریں. اس سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں. جی آپ جی, یعنی فرض نہ کر لیجئے, لیکن اگر اشراق کا وقت ہے صبح, صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اور موسٹلی صبح میں اگر آپ کے جو بھی نفل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. فرض پڑھنا ہے تو پھر تو رکنا پڑے گا, لیکن سنت اور نفل آپ چلتی گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے یہ ایک بہت لمبا چوڑا سوال ہے, نہیں جانا چاہیے بغیر کسی ایسی مجبوری کے جس کے بغیر نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہیں جانا چاہیے. سیدھی دو بات, ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے, فتق اللہ مستطعتم, اور اس بات کو عذر بنا کر پھر کتنے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. جی آپ, میں اپنے لیے کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کروں گی, اللہ یہ کہ میری آخری ہمت ختم ہو جائے, یا اللہ نہ کرے مجھ پہ کوئی ایسی آزمائش پڑے کہ مجھے اکیلے سفر کرنا پڑے, ورنہ میں نہیں کروں گی. جی پلین میں نماز کا, جی یہ ہے کہ فرض نماز کھڑے ہونا شرط ہے, آپ کو پتہ ہے قیام ہے نا, پڑھ چکے رکن ہے, تو حت البسا آپ کو کھڑے ہونا ہی پڑے گا. پیچھے اتنے سہولت سے وہ پڑھنے دیتے ہیں, الحمدللہ میرا حال ہے آپ سب سے زیادہ تو میں ہی سفر کرتی ہوں, میرا گمان ہے شاید آپ میں سے بھی کوئی ہو, لیکن اتنے پیار سے وہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ایک دو ایئر لائنز ہیں, میں نام نہیں لوں گی, ان کے سوا. اور دکھ کی بات ہے جتنی نان مسلم کمپنیز یہ آپ کی نماز کی حفاظت کرتی ہیں, مسلمان بھی نہیں کرتے. جائیں اپنی سیٹ پہ پڑھ لیں, اجازت نہیں. سیکیورٹی ایشو ہے. کیا سیکیورٹی ایشو ہے؟ آپ سارے تو چل پھر رہے ہیں, لیکن وہ ان کے رولز ہیں, لیکن غیر مسلم منع نہیں کرتے اور الحمدللہ اس سے عزت بھی کرتے ہیں. تو اور سفر میں سہولت ہے نا, कसर की भी, जमा तकदीम और जमा ताखीर, पहले पढ़ लीजिए बाद में पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। और इस पर हम बात कर भी चुके हैं सफ़र की नमाज में। जी आप पहले से पता, हम तो बुकिंग करानी हमारे लिए मसला बना होता है। सर के लिए सबसे बड़ा मुश्किल टाइम वो, उन्होंने क्या क्या दुनिया की चीज़ें देखनी होती, उधर क्या वक्त है इधर क्या वक्त है, तो नमाजों को देखें और अंदाज़ा भी हो जाता है। और जहाँ बैठे हैं अगर वक्त शुरू हो गया तो अगली भी पढ़ लें, अगर वक्त नहीं शुरू हुआ तो अगली वहाँ जाकर पढ़ लें, नियत करें। वैसे मैं तो साथ साथ यानी इकट्ठी ही पढ़ती हूँ, लेकिन जहाज़ में वक्त शुरू हो जाए तो दोनों पढ़ लेती हूँ। जी आप सेम बात है, एक ही बात है, ओवरसीज या बाहर या ओवर नाइट सफ़र नहीं करना चाहिए। वो फिर मजबूरी, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, अल्लाह से उतना डरें जितना जो जितना डर सकते हैं, ट्राई योर बेस्ट। जी जी वो भी, हाँ बच्चे बड़े हैं, 18 अकलमंद बच्चा है तो साथ वो बालिग हो गया तो ठीक है, तो अगर वो खुद ही बड़ा बेवकूफ़ है फिर क्या करे, तो जवान होते हुए बच्चों को ले। देखिए ये एक पूरा टॉपिक है, इसको समझिए और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे दी बेस्ट की तौफीक दे। मैंने जो आपको कहना वो जो है जो मैं अपने लिए पसंद करूँगी, मैंने अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई सफ़र किया होगा इंतहाई नागवारी कराहत और नफ़रत के साथ किया होगा, आई डोंट लाइक इट। और अल्लाह से यही दुआ आती है कि अल्लाह ताला ऐसे मौके ही ना आए कि हम अकेले करें। जी जी रोकिए, देखिए वॉशरूम के लिए गाड़ी रुकती, पेट्रोल के लिए रुकती, शुक्र है गाड़ियों की टैंकियाँ इतनी हैं कि 5-6 घंटे बाद रुकना ही पड़ता है। जहाँ वो रुके आप जाइए वॉशरूम में, वजू कीजिए और अपने साथ छोटा सा कपड़ा रख लीजिए, कहीं भी साइड पे एक नमाज डालिए और पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो करेंगे वो आसान होगा। ये बताइए कि आगे ये पढ़ना है या अशरा मुबशरा पढ़ना है। चलिए इंशाल्लाह आज यहाँ तक काफ़ी है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वक्त में, हमारी सोच में, तकवा में, ईमान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला मुझको संभालने वाला बना दे। खड़े बैठ